जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिविल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिविल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिविल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा।
आपकी क्लास है लेकिन आप नहीं आए ना टाइम पर।
एक मिनट
नहीं होगा।
एक मिनट
हाँ हाँ वो एक मिनट पाँच मिनट पहले आना चाहिए ना आपको। क्लास में पाँच मिनट पहले आना चाहिए जिस तरीका होता है।
आप एक मिनट वेट भी तो करो।
राधाष्टमी है तो कल राधाष्टमी का त्यौहार है। बहुत पवित्र त्यौहार है तो हम कुछ सुनेंगे कथा राधा रानी के बारे में। ठीक है। कल शाम को मैंने एक कथा सुनाई थी। बड़ी अद्भुत कथा थी वो राधा रानी के बारे में। बड़ी अद्भुत कथा थी तो इतनी अद्भुत कथा है कि मैं उसको दोबारा सुनाना चाहता हूँ। ठीक है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये पंखा सब बंद कर दीजिए। हरि बोल। सब पंखे बंद कर दीजिए। हरि बोल। सब कुछ सुनाई पड़ रहा है तो सुने बड़े ध्यान से। ये घटना उस समय की है जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। ठीक है तो जब गोवर्धन पर्वत धारण किया भगवान ने तो 7 दिन तक भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत धारण किया है ना। तो इससे अब ब्रजवासियों के पास कोई उपाय नहीं था कुछ और सोचने का। कृष्ण ही अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत धारण कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने जो कुछ किया था उसमें ब्रजवासी सोचते थे कि कृष्ण की रक्षा हो गई है। हमने जो है देवताओं की पूजा की और प्रार्थना की इससे कृष्ण की रक्षा हो रही। तो ब्रजवासी नहीं मानते थे कि कृष्ण ने असुरों का वध किया है पूतना का वध किया। वो सोचते हैं कि कृष्ण की रक्षा हो रही किसी प्रकार से। लेकिन अब गोवर्धन पर्वत धारण किया 7 दिन लगातार अब कैसे सोचेंगे। अब तो सीधी बात है कि कृष्ण ही जो है अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जितने भी गोप और गोपियां थे नंद भवन में आए और यशोदा सहित नंद के पास जाकर के बोले। क्या बोले? गोप बोले, हे गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ जो पर्वत उठाए। तुम स्वयं तो एक शिला भी 7 दिन तक नहीं उठाए रह सकते। कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है। आपके पुत्र में हमें शंका है। क्या आपका पुत्र नहीं है कृष्ण? आपका पुत्र नहीं, हमें तो बड़ी शंका है। बड़ी समस्या हो गई। जैसे गजराज कमल को उठा ले, गजराज यानी हाथी कमल को उठा ले, और जैसे बालक गोबर छत्ता उठा ले, उसी तरह इसने खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया। अयम बिभ्रत गिरिवरम कमलम गजराडिव कुछलींद्रम यथा बालो हस्तेन केन लीलयाम। हे यशोदा तुम गोरी हो, हे यशोदा तुम गोरी हो, और नंद जी तुम भी सोने के सदस्य, सोने के जैसे गोरे हो, किंतु ये बालक श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है, इसलिए आपके बालक के विषय में हमें बड़ी शंका हो रही है। इसका रूप रंग हमारे कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है, रूप रंग कुछ भी नहीं मिलता। ये बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ। बलभद्र जी विलक्षण है, किंतु इनकी विलक्षणता में दोष नहीं है, क्योंकि इनका जन्म तो क्षत्रिय परिवार में हुआ है, वसुदेव की पत्नी रोहिणी से पैदा हुए। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो जाति से हम तुम्हें निकाल देंगे। कितनी समस्या हो गई, सच नहीं बताओगे तो हम जाति से निकाल देंगे। अथवा ये बताओ कि गोकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। अब झगड़े की बात आ गई है, झगड़े की बात आ गई। ज्ञाते त्यागम करिष्यामो यदि सत्यम न भाससे गोपेषु चास्योत्पत्तिम वदचे नाकलिर्भवे। नारद जी कहते हैं गोपों की बात सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी, यशोदा जी को बहुत भय हुआ, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोप गणों से नंदराज इस प्रकार बोले। नंदराज बोले, यशोदा जी के पास तो कोई उत्तर नहीं था, वो क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन नंदराज जी बोले, नंदराज जी बोले, क्या बोले, नंद जी ने कहा हे गोप गण, एकाग्रचित होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा दूर हो जाएगी। गर्ग जी ने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? नंद जी बोल रहे हैं कि गर्ग जी की कही हुई बात मैं बता रहा हूँ। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। कृष्ण ये जो शब्द है इसमें सबसे पहला अक्षर क्या है, का। का अर्थ है कमलाकांत, का के बाद है रा, रा का अर्थ है राम, फिर शा का अर्थ है षटविध ऐश्वर्य के स्वामी भगवान विष्णु, उसके बाद है अणा नरसिंह भगवान, अणा नरसिंह भगवान, फिर अक्षर पुरुष और अंत में विसर्ग, दो बिंदु विसर्ग के दो बिंदु हैं, नर नारायण। ये छहों पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है वो साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण रखा गया है। कृष्ण का रा सा अणा फिर आ फिर विसर्ग है ना, तो छह अक्षर कृष्ण। युग के अनुसार इसका रंग सतयुग में शुक्ल होता है, चार युग होते हैं ना, चार युग, सतयुग में इसका रंग शुक्ल होता है, त्रेता में रक्त वर्ण होता है, द्वापर में पीत वर्ण होता है, और द्वापर के अंत में कलयुग के आदि में ये बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। चार युग में चार रंग है, सतयुग में कौन सा रंग है, शुक्ल, सतयुग में कौन सा रंग है, शुक्ल, त्रेता में कौन सा रंग है, रक्त, और द्वापर में पीत वर्ण, और कलयुग में कृष्ण वर्ण। इस कारण ये नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। ब्रजभानु नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति हैं ये। ये नंद जी बता रहे हैं किसको बता रहे हैं, गोपियों को बता रहे हैं, लेकिन ये गर्ग जी की बात बता रहे हैं। कि गर्ग जी ने मुझसे ऐसा कहा था, है ना। तो गर्ग जी की बात बता रहे हैं नंद जी, है क्या बता रहे हैं कि ब्रजभानु के घर में जो राधा पुत्री है उसके ये साक्षात पति हैं, गर्ग जी ने बताया मुझे, इसलिए ना राधापति भी कहा जाता है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। सर्वव्यापक है लेकिन तो भी गोलोक धाम में निवास करते हैं, अपना स्वरूप उनका गोलोक धाम है और सब जगह व्याप्त है, अपना विस्तार किया है, सब जगह व्याप्त है, इस रूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंग ब्रह्मांड पतिर गोलोके धाम निराजते। हे नंद, यही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंस आदि देवताओं को मारने और भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। हे नंद, इस बालक के अनंत नाम है जो वेदों में भी गुप्त हैं, वेदों में भी नहीं मिलते हैं, गोपनीय गुप्त हैं, और लीलाओं के अनुसार बहुत से नाम इसके विख्यात होंगे। अतः इसके कितने भी विलक्षण कर्म क्यों ना हो, उनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। नंद जी बता रहे हैं सब गोपों को कि गर्ग जी ने मुझे ऐसा बताया, तो पर्वत उठा लिया तो भी विस्मय नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे अनंत गुण हैं। हे गोपगण, अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता। क्या नहीं करता? संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वचन और ब्राह्मण वचन प्रमाण है, वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन प्रमाण है। इति श्रुत्वा आत्मजे गोपा संदेहं न करोम्यहं वेदवाक्यं ब्रह्मवचः प्रमाणं हि महीतले। गोप बोले, अब गोपों ने दूसरा प्रश्न रखा, इस बात का तो उत्तर मिल गया, किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन अब गोपों ने दूसरी शिकायत रखी। गोप बोले, जब महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? अब दूसरी शिकायत आ गई, भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? यदि आगतस्तव गृह गर्गाचार्यो महामुनि तत्क्षणे नामकरणे नाहुता ज्ञातयस्त्वया। चुपचाप अपने घर में बालक का नामकरण संस्कार कर लिया, ये तुम्हारी अच्छी रीति है क्या? ये तुम्हारी अच्छी रीति है कि अपने भाई बंधुओं को ना बुला करके अपने घर में चुपचाप क्या कर लिया? नामकरण कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यो कहकर क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर ब्रजभानुवर के पास आए। कहां पर आए? ब्रजभानुवर के पास आए। ब्रजभानुवर नंदराज के सहायक हैं, फिर भी परवाह ना करके जाति संगठन के बल पर गोप उनके पास जाकर बोले। गोपों ने कहा, हे ब्रजभानुवर, तुम हमारे ज्ञाति वर्ग में प्रधान हो, अतः तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो, ब्रजभानुवर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? अरे नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय हैं, अपनी जाति के मुकुट हैं और मेरे भी परम प्रिय हैं। कौन बोले? ब्रजभानु बोले, नंदी जी को क्यों निकालते हो? को दोषो नंदराजस्य ज्ञातेस्तम संतजाम्यहम् गोपेष्ठो ज्ञाति मुकुटो नंदराजो ममे प्रियः। गोप बोले, हे राजन, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम क्या करेंगे? तुमको भी जाति से निकाल देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है, तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर्ग के हाथ में नहीं सौंपा, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा है। आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट और अपने से अलग कर देंगे, नहीं तो नंदराज को शीघ्र छोड़ दो, छोड़ दो। वृषभानवर ने कहा, हे गोपगण, मैं एकाग्रचित होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूं, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। अब वृषभानुवर भी क्या बोले, गर्ग जी की बात बता रहा हूं, आप सुनो। उन्होंने बताया है, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंद ग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। मेरी पुत्र के लिए गर्ग जी ने मुझे बताया है, क्या बताया है, हाँ, तुम्हारी पुत्री के लिए उनसे बढ़कर कोई वर नहीं है। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंस आदि का वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। उन परा देवी को तुम नहीं जानते, ये वृषभानुवर कह रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? गोप गोपियों से बोल रहे हैं। और किसकी बात बता रहे हैं? गर्ग जी की बात। गर्ग जी ने मुझे ऐसा बताया। किसकी बात बता रहे हैं? गर्ग जी ने बताया ना मुझे। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। मुझे बताया था गर्ग जी ने, बताया कि गोलोक की जो पटरानी है, कृष्ण की पटरानी, वो तुम्हारे घर में कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई है। हाँ, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। यानी वृषभानुवर कह रहे हैं कि मैंने उनको बोला था कि आप विवाह करा दो, राधा कृष्ण का। तो गर्ग जी ने क्या कहा, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा, इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप सुंदर निर्जल स्थल पर साक्षात ब्रह्मा जी आकर श्री राधा और कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। गर्ग जी ने मुझे एक बताया, क्या बताया, निर्जन स्थान में, यानी कोई मनुष्य नहीं होगा। जब ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का विवाह करेंगे, उस समय किसी मनुष्य को देखने का अधिकार नहीं है। राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी निर्जन स्थान में करेंगे। अतः हे गोप प्रवर, तुम श्री राधा को साक्षात श्री कृष्ण की अर्धांग स्वरूप और गोलोक धाम की महारानी समझो, चिंता मत करो। तुम्हारे घर में राधा है, वो पहले से ही कृष्ण की अर्धांगिनी है। अब विवाह अगर होना है तो ब्रह्मा जी कराएंगे, और नहीं तो विवाह की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही कृष्ण की पटरानी है। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक से इस भूतल पर आए हो, तुम लोग भी आए हो। गर्ग जी ने मुझे बताया कि हम सब लोग गोलोक से इस भूतल पर आए हैं। इस तरह गोपियां और गौएं भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं। यूयम सर्वेपि गोपाला गोलोकादागता भुवि तथा गोपी गणा गावो गोकुले राधिके छया। यों कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से श्री राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता हूँ। कौन कह रहे हैं? वृषभानुवर कह रहे हैं कि जब से गर्गाचार्य ने मुझे ये बताया, तो मैं अपनी पुत्र के विषय में कोई शंका नहीं करता हूँ। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन और वेद वाक्य प्रमाण, वेद के वाक्य और ब्राह्मण के वचन प्रमाण है। हे गोपो, ये सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। एव मुक्त्वागते साक्षान् गर्गाचार्य महामुनो तद्दिनादथ राधायां संदेहं न करोम्यहम्। वेदवाक्यं ब्रह्मवचः प्रमाणं ये मैतले इति वा कथितं गोपा किं भूया श्रोतुमिच्छत। बहुत सुंदर कथा है, आप लोग सुनिए ध्यान से। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? मिथिला के राजा बहुलाशु, मिथिला के राजा बहुलाशु को सुना रहे हैं। मिथिला के राजा भगवान राम के समय में थे, सीता जी के पिता जनक, और इस समय कृष्ण के समय में मिथिला के राजा हैं जनक, सभी जनक कहलाते हैं। लेकिन वो शिरध्वज नाम के जनक हैं, सीता जी के पिता शिरध्वज नाम के जनक थे, और अभी जो जनक हैं इनका नाम है बहुलाशु, मिथिला के राजा बहुलाशु। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, ब्रजभानुवर की बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए, उनका सारा संशय दूर हो गया और उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। ब्रजभानुवरश्चेदं वचां श्रुत्वा ब्रजौकसः कोचो पुनः शान्तिगता विस्मिता मुक्त संशया। गोप बोले, हे राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। गोप क्या बोले? हे राजन, तुम्हारा कथन सत्य है, निश्चय ही श्री राधा श्री हरि की प्रिया है, इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। सही बात है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? सुन रहे यहाँ पर आप लोग? कोई सुन नहीं रहा क्या? नहीं सुनते? कौन कह रहा है? हैं? इधर कोई सुन ही नहीं रहा है। आप लोग क्या सुन रहे हो? क्या देख रहे हैं? ये कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ या कुछ किसी दीवारों को सुना रहा हूँ? किसको सुना रहा हूँ? कौन कह रहे हैं? गोप लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपका कथन सत्य है कि राधा श्री हरि की प्रिया है, इसी के प्रभाव से तुम्हारा वैभव ज्यादा दिखाई देता है। किसके प्रभाव से? राधा के प्रभाव से, राधा के प्रभाव से। ये माता जी लोग सुनती नहीं क्या? देखती हैं क्या? बातें करती हैं क्या? कर रहे हैं? है? सुनो ध्यान से, ये कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? सब लोग सुन रहे हैं? सुनिए, आपका वैभव ज्यादा दिखाई देता है तो समझ में आती है, आपकी बात समझ में आती है। आपने जो कहा वो बात सही है, है? राधा के प्रभाव से आपका वैभव है। हजारों मत वाले हाथी हैं, चंचल घोड़े हैं, और देवताओं के विमान जैसे करोड़ों रथ हैं, और सिविकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, सोने और रत्नों के आभूषणों से आभूषित करोड़ करोड़ गौवें आपके भवन में हैं। सोने और रत्नों के आभूषणों से विभूषित करोड़ करोड़ गौवें आपके घर में। कितना वैभव! करोड़ करोड़ गौवें सोने और रत्नों के आभूषण से विभूषित आपके घर में हैं। किनके घर में है? ब्रजभानुवर के घर में। गोप लोग बोल रहे हैं, आपके घर में विचित्र भवन है, नाना प्रकार के मणि रत्न है, और भोजन का सब प्रकार का सुख है। ये सब इस समय आपके घर में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आपका अद्भुत वैभव देखकर कंस भी चकित है, कंस को भी आश्चर्य होता है। किसका वैभव देख करके? ब्रजभानुवर का वैभव देख करके कंस को भी आश्चर्य होता है। इतना आपका है वैभव। कोटिशा कोटिशो गावो हे में रत्न मनोहरा मंदिराणी विचित्राणी रत्नानी विविधानी चा सर्वसौख्यम भोजनादि दृश्यते सांप्रतम तव कंसोपि दर्शितो जातो दृष्टाते बलम अद्भुतम। और आप कान्यकुब्ज देश के राजा भनंदन के दामाद हैं, राजा के दामाद हैं। आपका विवाह भी किससे हुआ है? राजा की पुत्री से हुआ है। आश्चर्य की बात है, जो गोप जाति है उसमें किसी का विवाह राजा से थोड़ी होता है, है ना? आप गोप होकर के भी, ग्वाले होकर के भी आपका विवाह किससे हुआ है? राजा की पुत्री से हुआ है। कहाँ के राजा? कान्यकुब्ज के राजा, इस समय कन्नौज, कन्नौज के राजा। उनका नाम है भलंदन, उनकी पुत्री से आपने विवाह किया है, कुबेर के समान आपका धन संपत्ति, आपकी धन संपत्ति कुबेर के समान है। कान कुब जपते साक्षात भलंदन जा माता तुम महावीर है कुबेर एवं कोशवान। आपके समान वैभव नंदराज के घर में भी नहीं है, क्या समझे? आपके समान वैभव नंदराज के घर में भी नहीं है। अब ये संदेह है, जब राधा के पति कृष्ण है नंदराज के घर में, राधा के पति हैं, तो आपके घर में इतना वैभव है तो नंदराज के घर में इतना वैभव क्यों नहीं है? नंदराज के घर में तो और ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारी शंका है, ये हमारी शंका है। नंदराज तो गौ में पालने वाले हैं, किसान हैं और बड़े दीन हैं। यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। परीक्षा कराओ नंद के वैभव की, कि आपसे ज्यादा उनके पास है संपत्ति, ये परीक्षा हमारे सामने आप कराइए। कौन बोल रहे हैं? गोप गोपियां बोल रहे हैं, हैं कि हमारे सामने नंद की परीक्षा कराइए, जब कृष्ण उनके पुत्र हैं, हैं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं, तो आपसे ज्यादा तो उनके पास होना चाहिए संपत्ति। नारद जी कहते हैं, राजन उन गोपों की बात सुनकर वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा करी। उन्होंने बड़े बड़े मोतियों के 1 करोड़ हार नंदराज के घर में भिजवाए, बड़े बड़े मोतियों के 1 करोड़ हार, एक एक मोती 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की कीमत का, क्या समझे? 1 मोती 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की कीमत का, और ऐसे मोतियों के 1 करोड़ हार नंद महाराज के घर में भिजवाए। प्रकाश फैल रहा था, उन मोतियों का प्रकाश फैल रहा था, कितने कीमती मोती थे, उनका प्रकाश फैल रहा था। और उन व्यक्तियों को भेजा जो वर को वरण करने वाले हैं, वर को वरण करने वाले हैं, अपनी ओर से भेजा हैं, लड़की वालों की ओर से वृषभानुवर ने जो है 1 करोड़ मोतियों के हार भेजे नंदराज के घर में, किस लिए? लड़के की गोद भरने के लिए। हरि बोल हरि बोल, नींद आ रही है, हैं? यहाँ सोने के लिए बैठे हैं आप लोग, हैं? कथा नहीं सुन रहे, ये कथा नहीं मिलेगी दोबारा। वृषभानुवर ने 1 करोड़ मोतियों के हार कहाँ भेजे? नंद महाराज के घर में भेजे, हैं? और उन आदमियों को भेजा जो संदेशा देंगे कि लड़का की गोद भरने के लिए वृषभानुवर ने अपनी ओर से भेजा है। 1 मोती कितने का है? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का 1 मोती, और ऐसे 1 करोड़ हार। अब 1 हार में कितने मोती हैं? पता नहीं कितने मोती होंगे। 1 करोड़ हार मोतियों के भेजे। नंदराज की सभा में जाकर उन लोगों ने मोतियों के हार सामने रखे और प्रणाम करके उनसे कहा, हे नंदराज, जिसके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं, जो मुख में करोड़ों चंद्रमा की कांति धारण करती है, उस अपनी पुत्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने वर की खोज करते हुए ये विचार किया कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण ही राधा के दिव्य वर हैं। उन्होंने विचार किया, वे गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ हैं। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो अब जल्दी बात शुरू हो गई। गोवर्धन पर्वत को उठाया, हे वैश्य प्रवर, ये सब देख और सोच विचार कर वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। तवांगजम दिव्य मनंग मोहनम गोवर्धनोद्धारण दो समुद्भटम संवेक्ष सस्मान ब्रजभानुबंदिता संप्रेषयामास विशांपते प्रभु। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से ये हार ग्रहण कीजिए। कौन बोले ब्रजभानुवर से के द्वारा भेजे हुए आदमी बोले। किससे बोले? नंदराज से बोले। फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए हाँ इसी प्रकार का कुछ रत्न भेजिए। हमारे कुल की यही रीति है कि कन्या की ओर से भेजा जाता है लड़की गोद भरने के लिए, फिर लड़के की ओर से कन्या की गोद भरने के लिए भी भेजा जाता है। तो आप भी भेजिए। वरस चांग के भरनाय पूर्वम मुक्ता फलानाम निचयम गृहाण इतश्च कन्यार्थम अलम प्रदेही सहसा ही चास्मत कुल जा प्रसिद्धि। नारद जी कहते हैं राजन उतनी संपत्ति को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए, तो भी कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके समान कुछ रत्न है या नहीं इस बात को पूछने के लिए सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। एकांत में अब उनको विचार करना है यशोदा के साथ। क्या विचार करना है? भाई इसी प्रकार का कुछ हमें अब भेजना पड़ेगा। लड़का की ओर से लड़की की गोद भरने के लिए हमें भेजना पड़ेगा। अब वहां नंद और यशोदा ने बहुत देर तक विचार किया। हमारे पास क्या है? और यही निष्कर्ष निकला कि हमारे पास तो कुछ है ऐसा नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लज्जा चली गई। बातें नहीं इशारा करिए सबको चुप रहने का। कौन बातें कर रहा है? अपने बच्चों को संभालिए, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। कुछ लोग बातें करते हैं और सुनते नहीं कथा। इनको इशारा करिए चुप रहने का। अब लाज गई, अब हमारी समाज में इज्जत चली जाएगी, हम लोगों की सबूर हंसी उड़ाई जाएगी। कौन कह रहे हैं? नंद यशोदा कह रहे हैं इस धन के बदले हम दूसरा कौन सा धन दें? क्या करें? श्री कृष्ण के विवाह के निमित्त हमें अब क्या करना है? लोके लज्जा गता सर्वा हासा स्याचिन धनोधृतम किम कर्तव्यम तत्प्रति यत् श्री कृष्णो वाह कर्मणि। तो पहले कुछ जो वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, तब अपने पास धन आने पर वधु के लिए उपहार भेजा जाएगा। अब ये विचार किया। क्या विचार किया? इसको तो ग्रहण कर लो, इसको तो सुरक्षित रख लो, फिर कुछ आएगा तो विचार करेंगे भेजेंगे। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा के पास श्री कृष्ण छिपे हुए आ गए। कृष्ण छिप करके आ गए, नंद यशोदा को पता नहीं है, चिंता कर रहे हैं, और कृष्ण आ गए। उनको पता नहीं चला कि कृष्ण आए। आते ही उन्होंने 100 हार निकाल लिए। 1 करोड़ हार में से कितने निकाल लिए? 100 हार निकाल लिए, और घर से बाहर खेतों में ले जाकर हाथ से मोती का एक एक दाना उसी भांति खेत में छींट रहा, जैसे किसान अब खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है। बड़ी सुंदर कथा है, सुनिए ध्यान से। अलक्ष्य आगतस्तत्र भगवान वृद्धनादन नीत्वा दाम शतम तेषु वै क्षेत्रेषु सर्वतः मुक्ता फलानि चैकैकम् प्राक्षिपन् स्वकरेण वै यथा बीजानि चान्नानाम् स्वक्षेत्रेषु कृषिबलः। अब नंद जब उन हारों की गणना करने लगे तो 100 मालाएं और कम हो गई। अब और बेच दी, अब और कलंक लगा, 100 इसमें भी कम हो गए, तो उनके मन में संदेह हुआ। नंदी जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में इतना धन है ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच में मुझ पर बड़ा भारी कलंक लगाया जाएगा। ये तो बड़ी कलंक की बात हो गई मेरे साथ में, 100 इसमें भी कम हो गए। यदि श्री कृष्ण या बलदेव ने खेलने के लिए अगर निकाले हों तो मैं उनसे आदर पूर्वक पूछूंगा जैसे झूठ ना बोले। अगर डांट करके पूछेंगे तो झूठ बोल सकते हैं कि नहीं निकाले। आदर पूर्वक पूछूंगा, किससे पूछूंगा? हाँ, कृष्ण और बलराम से आदर पूर्वक पूछूंगा। अथवा क्रीडनार्थम ही कृष्णो यदि गृहीतवान बलदेवो अथवा बालस तो पृच्छेदे न मानसा। नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार विचार कर नंद ने श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछा। बेटा लिए है क्या? डांट के नहीं पूछा, तूने लिए क्या? डांट के पूछे तो कृष्ण बोल देंगे मैंने नहीं लिए, तूने चुराए। तो डांट करके पूछेंगे तो आदर पूर्वक पूछे, बेटा लिए हैं क्या? लिए हैं। तब जोर से हंसते हुए श्री कृष्ण नंद से बोले, यत्तमचार्य नंदोपि कृष्णं बप्रच्छ साधनं प्रहसन भगवान नंदं प्राह गोवर्धनोद्धरः। श्री भगवान ने कहा कि हे दात, हम तो किसान हैं, जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बो दिए। हमारे पास जो भी चीज़ होती है खेत में डाल देते हैं, उससे हमको ज़्यादा मिल जाता है, तो हमने खेत में बो दिए। कृषि वाला वयम गोपा सर्वे बीज प्ररोहका क्षेत्र मुक्ता प्रबीजानी विकीर्णा कृतवान। तब नारद जी कहते हैं, राजन बेटे की मुँह से ये बात सुनकर नंद ने डांटा, पागल, ये मोती कहीं बोए जाते हैं, बड़ा पागल है। तो कृष्ण को डांट रहे हैं नंद जी, और उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उनके साथ खेतों में गए। चल कहाँ पर डाले हैं, दिखा कहाँ पर डाले हैं। लाने के लिए गए कि उठा करके ले आएंगे, ये बड़ा पागल है, इसने जो है खेतों में डाल दिए बीज, मोती डाल दिए। वहाँ मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे। इतनी देर में, थोड़ी देर में ही वहाँ पर क्या हो गए, सैकड़ों सुंदर सुंदर वृक्ष मुक्ता फल के दिखाई देने लगे। हरे हरे पत्तों से सुशोभित और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तत्र मुक्ता फलानाम तो सांकिना सतसा सुभा दृश्यन्ते दीर्घ वपुषो हरित पल्लव शोभिता। जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में करोड़ करोड़ मुक्ता फलों के गुच्छे लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। करोड़ करोड़ गुच्छे मोतियों के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुक्तानाम स्तबकानाम तो कोटिसा कोटिसो नृप संघा विलंबिता रे जुर ज्योतिषी वह नभस्थले। तब हर्ष से भरे हुए नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मोती उन वृक्षों से तोड़ दिए और उनका 1 करोड़ भार गाड़ियों में लदवा कर वरणकर्ताओं को दे दिया। मोतियों के 1 करोड़ हार ब्रजभानुवर ने भेजे थे, उन्होंने 1 करोड़ भार भेज दिए मोती गाड़ियों में लदवा करके। कितना है? बहुत ज़्यादा है, 1 हार से 1 भार बहुत ज़्यादा होता है। नंद महाराज ने भेज दिए, तुरंत ही भेज दिए, कुछ समय नहीं लगा। उनके पास जैसे सब पहले से रखा हुआ है, वो चिंता कर रहे थे हमारे पास तो है ही नहीं, चिंता कर रहे थे चलो इसको संभाल लो, बाकी कभी आएगा तो फिर लड़की की गोद भरने के लिए भेजा जाएगा। उसी समय ही सब मिल गया, उनके पास कुछ भी नहीं था और तुरंत ही सब कुछ जो है हो गया, तैयार हो गया और भेज दिया उन्होंने। हे राजन, वो सब लेकर वरदर्शी लोग ब्रजभानुवर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुभव वैभव का वर्णन कर रहे हैं, करने लगे। वो जो आदमी गए थे ब्रजभानुवर के द्वारा भेजे हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो जरा भी देर नहीं लगाई। ब्रजमान भर को बताते हैं नंद महाराज ने जरा भी देर नहीं लगाई है, हमने भेजे 1 करोड़ हार, उन्होंने 1 करोड़ भार मोतियों के भेज दिए तुरंत ही, ले जाओ। उनके पास तो जो है कोई कमी नहीं है, नंद महाराज के पास। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए, वो ठहरे हुए थे ना, जितने गोप गोपियां हैं सब ब्रजभान वर के यहाँ ठहरे हुए थे कि हमारी हमारे सामने परीक्षा कराओ नंद महाराज के पास वैभव कितना है, तो ठहरे हुए थे। और ब्रजभान वर ने भेजा नंद महाराज के पास और वहां से आ गया इतना, ब्रजभान वर दिखाते देखो नंद महाराज का वैभव देखो कैसा है। सब गोप विस्मित हुए, नंद नंदन को साक्षात श्री हरि जानकर समस्त ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया, सब ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने ब्रजभानवर को प्रणाम किया। अब पूरी बात समाप्त हो गई कि भाई नंद महाराज को जाति से निकालना है, ब्रजभानवर को भी जाति से निकालना है, सब संशय दूर हो गया, सब लोग प्रसन्न हो गए। तदाति विस्मिता सर्वे ज्ञात्वा नंद सुतम हरिम ब्रजभानुवरम नेमुर निस्संदेह ब्रजोकसः। हे राजन, उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने ये जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा है और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। सब ने जान लिया, जितने गोप गोपी थे सब ने जान लिया। राधा हरे प्रिया ज्ञाता राधा याश्चा प्रियो हरे ज्ञातो ब्रज जन सर्व तद्दिनान में तिलेश्वर। हे राजन, जहाँ नंद नंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया। वहाँ पर क्या प्रकट हो गया? एक सरोवर प्रकट हो गया। बाद में जब भगवान की लीला समाप्त हुई, ब्रजवासी सब गोलोक धाम चले गए, तो वो स्थान क्या बन गया? एक सरोवर बन गया। जो तीर्थों का राजा है, क्या है वो? तीर्थों का राजा है, उसका नाम क्या है? मुक्ता सरोवर। मुक्ता क्षेपा कृतो यत्र हरिणानंद सोनुना मुक्ता सरोवरस्तत्र जातो मैथिल तीर्थरा। जो वहाँ एक मोती का भी दान करता है वो लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। एकम मुक्ता फलस्यापि दानम तत्र करोति यहाँ लक्ष्य मुक्ता दान फलम समाप्नोति न संशयः। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, तुम अब और क्या सुनना चाहते हो? तो बहुत सुंदर कथा हमने सुनी। एवं ते कथितो राजन गिरिराज महोत्सव भुक्ति मुक्ति प्रदो नृणाम किम भूया स्रोतुम इच्छसी। तो ये कथा जो है बहुत सुंदर है जो हम लोगों ने सुनी है। इस कथा को इस कान से सुना है तो उस कान से नहीं निकालना, याद रखना। बड़ी सुंदर कथा है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था तो ब्रजवासियों को बड़ा संदेह पैदा हुआ। क्या संदेह पैदा हुआ, कौन बताएगा? ब्रजवासियों को बड़ा संदेह पैदा हुआ। क्या संदेह पैदा हुआ, कौन बताएगा? नहीं, ये तो बाद में हुआ। नहीं, ये तो दूसरी बात। पहली बात क्या? तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता, क्यों? गोवर्धन पर्वत धारण किया, 7 दिन तक पर्वत धारण किया। और नंद जी, आप तो एक पत्थर भी नहीं 7 दिन तक उठा पा सकते, तुम्हारे बालक 7 दिन तक पर्वत धारण किया। तो इस शंका उन्होंने पहले क्यों नहीं की? कृष्ण ने तो पूतना को भी मारा था, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा है? हाँ, क्योंकि उस समय तो देख नहीं सकते, अपनी आंखों से नहीं देखा ना। पूतना को मारा, तो अपनी आंखों से तो नहीं देखा, अघासुर बकासुर को मारा तो क्या सोचा कि कृष्ण की रक्षा हो गई, हमारे पूजा पाठ से कृष्ण की रक्षा हो रही है, ऐसा सोचा। लेकिन यहाँ पर तो अपनी आंखों के सामने 7 रात 7 दिन तक क्या देखा, कृष्ण ही धारण किए हैं। अब कहाँ तक सोचेंगे कि नहीं कृष्ण को कहीं और से शक्ति मिल रही है, अब क्या सोचेंगे, है ना। जब कृष्ण ने छकड़ा को उल्टा किया था, पैर मार करके छकड़ा उल्टा किया था, है तो बच्चों ने देखा था, बच्चों ने बताया कि कृष्ण ने पैर मार के छकड़ा उलट दिया, एक उन्होंने विश्वास नहीं किया, ये तो बच्चे हैं, किसी ने विश्वास नहीं किया, ये तो बच्चे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं, है। जब यमुनार्जुन वृक्ष उखाड़े थे कृष्ण ने, तो उसमें बच्चों ने बताया कि कृष्ण ही जो है उखल को खींचा, उखल फंसा था पेड़ों के बीच में और पेड़ गिर गए, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्यों, बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन अब तो अपनी आंखों देख रहे हैं, अब तो अपनी आंखों देख रहे हैं, और 7 दिन 7 रात लगातार, अब कहां तक कुछ दूसरी बात सोचें, है ना। तो उन्होंने जो है नंद महाराज से शिकायत की और कहा कि इस बालक के उत्पत्ति के विषय में कुछ बड़ा रहस्य है, आप अगर नहीं बताओगे तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, हाँ हम क्या करेंगे, आपको जाति से बाहर निकाल दें, नहीं सुनते हैं, समझ में नहीं आया, हम क्या करेंगे आपको जाति से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो यशोदा जी तो डर के मारे कांपने लगे, तो नंद जी बताते हैं, नंद जी ने क्या बताया, किसकी बात बताई, गर्ग जी की बात बताई, कि गर्ग जी ने हमको बताया ये कृष्ण कौन है, गोलोक धाम के स्वामी हैं, गोलोक धाम के स्वामी हैं, और राधा इनकी प्रिया है जो वृषभानु के घर में है, है। तो इनके जो है जितने भी कार्य हैं ये असीमित हैं, दिव्य कार्य हैं, इसमें संशय नहीं करना है, कोई विस्मय नहीं करना, आश्चर्य नहीं करना, नंद जी ने बताया। तो नंद जी ने जब बताया तो प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, लेकिन फिर दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, दूसरा प्रश्न क्या था, नामकरण तुमने कराया गर्ग जी के हाथों और हमको नहीं बुलाया, ये कैसा तुम्हारा व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार है। लेकिन नंद जी ने क्यों नहीं बुलाया था, नामकरण संस्कार जब गर्ग जी ने किया था तो नंद जी ने इन सबको क्यों नहीं बुलाया था, हाँ गर्ग जी ने कहा था कि कंस का डर है, क्यों, नहीं नहीं कंस को पता है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, पुरोहित हूँ, कंस को पता है कि गर्ग जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं, तो बलदेव का अगर नामकरण संस्कार करेंगे तो वो तो वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन अगर कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्ग जी करेंगे तो कंस को शंका होगी कि कृष्ण भी जो है वसुदेव का ही पुत्र है, और फिर कृष्ण का अनिष्ट करेगा तो हमारा बड़ा दोष हो जाएगा, गर्ग जी बोले। तो नंद जी ने क्या कहा, नहीं नहीं आप नामकरण संस्कार कर दीजिए, हमारे ब्रज में भी किसी को पता नहीं चलेगा, आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो नंद जी ने चुपचाप नामकरण संस्कार करा लिया था, कितने लोग थे उस समय, केवल गर्ग जी थे और नंद जी थे और यशोदा थी और रोहिणी माता थी और कृष्ण और बलदेव, कितने लोग थे, 6, एक तो गर्ग जी, दूसरे नंद जी, तीसरे यशोदा जी, चौथे रोहिणी माता, 4, और पांचवें कृष्ण और छठे बलदेव, 6 लोग थे केवल, और किसी की कहां पर कराया था, गऊओं के बीच में, 1 करोड़ गऊ है नंद महाराज के, 1 करोड़ गऊओं के बीच में क्या पता चले, खुले में कराया, खुले मैदान में करा है, लेकिन 1 करोड़ गवों के बीच में कहाँ पता चलेगा। नामकरण कराया। अब जब उन्होंने शिकायत की आपने हमको नहीं बुलाया, तो नंदी जी अभी भी डर रहे थे कैसे बताएं, इसलिए कुछ उत्तर नहीं दिया। अब वो जो है नाराज होकर चले गए, और ब्रजभानु से फिर क्या बोले, ब्रजभानु के पास जाकर क्या बोले, अब जब कर रही हो अभी है? कथा नहीं सुनती आप, आपको जब नहीं करना चाहिए, अभी कथा सुनना चाहिए, जब तो बाद में हो जाएगा। ब्रजभानु से क्या बोले, नहीं सबसे पहले क्या बोले, नंद जी को जाति से बाहर निकालो, नंद जी को जाति से बाहर निकालो, हाँ, और अगर नहीं निकालोगे तो हम तुमको भी जाति से बाहर निकाल देंगे। तो तुम्हारे घर में कन्या बड़ी है, विवाह की योग्य है, और तुमने विवाह नहीं किया, है ना। तो ब्रजभानुवर ने भी उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, गर्ग जी की बात बताई, वही बात बताई कि कृष्ण जो है गोलोक धाम के स्वामी है, राधा उनकी ही रानी है, और हम सब लोग भी वहीं से आए हैं, गोलोक धाम से आए हैं, हम सब लोग आए हैं, इस बात को समझ लो। इस बात को सुन करके वे क्या हुए, संतुष्ट हो गए या नाराज हुए? संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, हैं? संतुष्ट हो गए। उन्होंने भी पुष्ट किया कि हाँ ये बात सही है, क्या तुम्हारे घर में जो राधा है वो गोलोक धाम की महारानी है, ये बात सही है, क्यों कैसे है? तुम्हारे घर में बहुत वैभव है, बहुत वैभव है, करोड़ों करोड़ों गौएं सोने और रत्नों के आभूषण पहनती हैं, गौएं करोड़ करोड़ गौएं सोने रत्नों के आभूषण पहनती हैं, स्त्री पुरुष की तो बात छोड़ो, और करोड़ों करोड़ों तुम्हारे घर में रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, तो तुम्हारा तो जो है सही है, तुम्हारे घर में राधा है, गोलोक धाम की महारानी है, सही बात है। लेकिन शंका, क्या शंका, नंद महाराज के घर में कृष्ण जो है गोलोक धाम के स्वामी होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देता है, किसान है, खेती करते हैं और गौएं पालते हैं, कुछ नहीं है नंद जी के घर में, कुछ नहीं है, ये हमारी शंका है। अब इसको मिटाओ, परीक्षा करो, तुमसे ज्यादा अगर नंद महाराज के घर में है तो हमें दिखाओ, उनके घर में कुछ नहीं दिखाई देता। तो ब्रजभानुवर ने क्या किया, 1 करोड़ मोतियों के हार, एक मोती कितने का, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का, एक मोती ऐसे 1 करोड़ हार मोतियों के। अब एक हार में कितने मोती ये पता नहीं है, 1 करोड़ हार भिजवाए ब्रजभानुवर ने, किसने भिजवाए, लड़का की गोद भरने के लिए, लड़की वालों की ओर से लड़का की गोद भरने के लिए 1 करोड़ मोतियों के हार भिजवाए, और क्या संदेश दे दिया, इसी प्रकार की संपत्ति आप लड़की की गोद भरने के लिए आप भिजवाइए। तो नंद जी जो है क्या प्रसन्न हुए या चिंतित हुए, चिंतित हो गए, क्यों, हमारे पास तो नहीं है, अब जाति में जो है हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, हैं? फिर क्या सोचा, क्या करें, अभी क्या करें, चलो इसको गिन तो लो कम से कम, जब गिना तो उसमें भी कम हो गया, कितना 100 कम हो गया, और चिंता हो गई, अब इसमें भी कलंक लगा हमारे ऊपर कि 100 हार इसमें भी कम हो गई, क्या करें, क्या करें, क्या करें, 100 हार कम हो गए, क्या करें, बलराम किसी से पूछेंगे, कैसे, डांट के पूछेंगे, प्यार से, क्यों प्यार से पूछेंगे, आदर, आदर पूर्वक पूछेंगे। तो कृष्ण ने पूछा आदर पूर्वक, तो कृष्ण ने बताया, हंसते हुए बताया, क्या बताया, हम लोग क्या हैं, किसान हैं, हमारे घर में कोई चीज होती है तो क्या करते हैं, खेतों में डाल देते हैं, तो हमें ज्यादा मिल जाता है। तो नंद जी क्या हुए, नाराज हुए या प्रसन्न हुए, नाराज हुए, क्यों नाराज हुए, हाँ, बड़ा पागल है ये लड़का, बड़ा पागल है। मोतियों के कहीं हूँ, खेती होती है, चल कहाँ है, देखा कहाँ पर है। तो ले गए कृष्ण कहाँ पर, जहाँ पर मोती बिखेरे थे। तो क्या देखा, बड़े बड़े मोतियों के गुच्छे आकाश में लटक रहे हैं। तो नंद महाराज ने क्या किया, 100 भार मोतियों के गाड़ियों में लदवा करके भिजवा दिए, उसी समय भिजवा दिए। और बृज भानुवर ने क्या बताया, देखो बिल्कुल देर नहीं लगी, बिल्कुल देर नहीं लगी। नंद महाराज के पास कितनी संपत्ति है, अब समझ लो कितनी संपत्ति है। हमको देर लगी भेजने में, उनको देर नहीं लगी भेजने में, उनके पास इतनी संपत्ति है। तो सब गोप जो है बड़े प्रसन्न हुए। हरि हो श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।
सीता मित्र प्रभु के।